क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
विश्व हिंदी सचिवालय के पाक्षिक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आप तो जानते ही हैं, हम हर बार किसी न किसी नए मेहमान को लेकर आते हैं, और आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर मीरा सिंह, जो विश्व हिंदी सचिवालय के 17वें कार्यारंभ दिवस में हमारी मेहमान रहीं। आपका स्टूडियो में स्वागत है। मीरा जी, सर्वप्रथम तो हम जानना चाहेंगे कि आपका परिचय इतना लंबा है जो मुझे मिला पढ़ने के लिए, तो ये समझ में नहीं आता कि उसमें से क्या बताऊं। तो चाहेंगे कि आप स्वयं अपने बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
मैं सादर सभी को अभिनंदन करती हूं, और विश्व हिंदी सचिवालय के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए मैं मॉरिशस आई, और आज सौभाग्य है कि रेडियो पर बातचीत करने का सौभाग्य आप लोगों से मिला। दरअसल यहाँ पर मेरे दो किताबों का भी विमोचन किया गया, जिसमें मेरे खुद जीवन प्रवाह नाम से आत्मकथा था और एक लक्षिता उपन्यास था
जी।
तो अनुभव की प्रकाष्ठा बहुत सारी किताबें, लगभग 21 किताबों की रचना मैंने कर डाली है, लेकिन जब शोध कार्य बच्चे करने लगे तो मुझे यह अनुभव हुआ कि उनको मेरे व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी के लिए, लेखन के लिए मेरा आत्मकथा जरूरी है। इसलिए मैंने अपने पूरे जीवन के 70 वर्षीय अनुभव को इस आत्मकथा में, जो कुछ भी जिया है अपने जीवन में, उसे लिखकर एक पुस्तक का आकार दिया है। और सौभाग्य है कि विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की भूमि पर उसका विमोचन हुआ है।
आपको विमोचन के लिए बहुत बहुत बधाई। और दूसरी बात हम जानना चाहेंगे, ऐसी उसमें क्या बात है, आपके जीवन के ऐसे कौन से पल हैं जो आपने उसमें समाये हुए हैं?
तो मैं एक कविता के रूप में अपना संक्षिप्त परिचय देने की इस पुस्तक में कोशिश की है
जी।
और वह है इस प्रकार, उत्तर प्रदेश में जन्म लिया, गुजरात में पाई ज्ञान, मुंबई में कविता सवैया, अमेरिका में मेरो संस्थान। तो उत्तर प्रदेश भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशाल अंग है, और वहाँ मेरा जन्म बलिया डिस्ट्रिक्ट बलिया जिला में हुआ है, जहाँ से कि स्वतंत्रता के टाइम में, जब पूरा देश भारतवर्ष परातंत्र था, तो मंगलदास पांडे जी थे जो कि अपने बलिया के पुलिस चौकी जो थी उसके ऊपर तिरंगा फहराए थे
जी।
और उसी भूमि से हूँ, तो उन लोगों का हमारे नस में एक तरह से उत्साह ऊर्जा साहस है, जिसकी वजह से मैं वहाँ से निकलकर और आज अमेरिका में अपना संस्थान खोल रही हूँ। और संस्थान खोलने का भी कारण है कि विदेशों में हिंदी की थोड़ी गति चल तो रही है, लेकिन जिस हिसाब से जितनी प्रभावकारी हिंदी का वर्चस्व है
होना चाहिए,
हाँ, वो घटता जा रहा है
बिल्कुल।
और हम हिंदी दिवस जैसे भी त्यौहार को मना तो लेते हैं 2-1 घंटे के लिए, उसके बाद हमारा मन करता है कि हम फिल्मी गानों की अंताक्षरी करें। ऐसी ही कुछ घटना मुझे अमेरिका में देखने को मिली थी, जहाँ मैं मुख्य अतिथि के रूप में थी, और मेरे मन में एक झंझावात हुआ। कोई अपनी ये संस्था खोलने का ऐसा पहले कोई उद्देश्य नहीं था, अचानक इस झंझवात को हमने स्वीकार किया, और मैंने अपने भारत के 3 साहित्यकारों को, जो मेरे PhD 91 में सहयोगी थे, उनको फ़ोन लगाया। उसमें से एक विशेष रूप से बुद्धिनाथ मिश्र जी हैं, आलोक गुप्ता जी हैं, और इन लोगों से मेरा अनुरोध हुआ कि आप मुझे 108 साहित्य कार्य दीजिए
जी,
जो साहित्य की गरिमा को महिमा को समझता हो। और उन लोगों का ये हार्दिक सहयोग था या माँ सरस्वती का आशीर्वाद था, जो सबकी मति को
जी
उन्होंने हमारे तरफ घुमा दिया कि इनका कार्य करवाना है। और रातों रात 108 साहित्यकारों को, इतने प्रबुद्ध साहित्यकारों ने खुद आमंत्रित करके मेरा पता फ़ोन नंबर दिया, क्योंकि अमेरिका से सबको जुटने का एक बहुत ही ललक उत्साह था
जी।
और 108 की जगह 125 साहित्यकार उसमें सम्मिलित हुए, उसमें कुंवर बेचैन जी भी थे
जी।
और पहले दिन ही उद्घाटन समारोह में ही भारत शिक्षा मंत्रालय के उपाध्यक्ष अनिल जोशी जी
जी,
केंद्रीय हिंदी संस्थान के निर्देशक जो थी बीना शर्मा जी, ये लोग अध्यक्ष के रूप में जुड़े और पूरे विश्व के लोग थे। सबका नाम बता नहीं सकती हूँ, लेकिन सबकी सहायता को मैं नमन करती हूँ।
जैसे अभी आपने बताया आपकी एक नई संस्था है जिसका आपने जोड़ा है, उस संस्था में आपकी गतिविधियाँ क्या होती हैं?
मैं पहले ही बताई कि इस संस्था की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई कि हिंदी या साहित्य होता क्या है
जी।
तो साहित्य का मतलब ही है सहयोग, हित के लिए।
हित के लिए सहयोग,
हित कैसे होगा जब हम सहयोग करेंगे?
बिल्कुल।
इसी सहयोग की भावना को जब हमारे आदि पूर्वजों ने महसूस किया, तब एक सहयोग की भावना होते होते हम आदि मानव से एक सुसंस्कृत मानव बने। तो साहित्य का उद्देश्य ही होता है सांस्कृतिक बनाना, लोगों को मूल्यों से परिचित कराना। तो विशेष रूप से उद्देश्य तो यही है, लेकिन हम बड़े तो कुछ हद तक मूल्यों को जानते हैं, अपनाते हैं और पालन भी करते हैं, लेकिन आज के बच्चों में,
मैं यही पूछना चाह रही थी कि बड़े लोग जैसे जुड़े हुए हैं, आप बच्चों को उससे कैसे जोड़ना चाहती हैं और कहाँ तक जुड़ पाए हैं वो बच्चे?
तो देखिए, जहाँ तक मैं जानती हूँ और देख रही हूँ कि हिंदी जो है, चूँकि भारत के भारतीय क्षेत्र से बहुत सारे पढ़े लिखे लोग
जी
पूरे विश्व में फैले हुए हैं,
बिल्कुल,
और एक हिंदी ही ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से वे एक दूसरे से जुड़कर सहानुभूति सहृदयता वहाँ भी पाते हैं। तो हिंदी को फैलाना
जी ये एक उद्देश्य रहा,
ये उद्देश्य है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है
जी।
और मातृभाषा में जो हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वहाँ जो सहृदयता हमको मिलती है, वे अंग्रेजी में बोल करके नहीं मिलती है। अंग्रेजी में बोल के हम नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी की जो संस्कृत और प्रवृत्ति है
जी,
इंग्लैंड की भाषा है एक तरह से, और इंग्लैंड के लोगों ने लगभग हर एक देश विदेश के लोगों को अपने अंदर अपने कब्जे में दास बनाने की प्रवृत्ति रखती है। मतलब वहाँ सहृदयता का
स्थान नहीं है, बिल्कुल।
और हिंदी ऐसी है जो सबको जोड़कर सभी प्रकार की भाषाओं को से शब्दों को उठा करके हिंदी का एक तरह से उत्पत्ति हुआ है।
बिल्कुल। हम ये जानना, आप मॉरिशस पहली बार आई हैं तो मॉरिशस आकर के आपको कैसा लगा? आप भारत से हैं, आप अमेरिका से हैं, वहाँ की हिंदी, अमेरिका की हिंदी और मॉरिशस की हिंदी, हालांकि आप अभी थोड़े ही समय से हैं, लेकिन फिर भी यहाँ आकर आपको कैसा लगा और आपने यहाँ लोगों को हिंदी से जुड़ा हुआ पाया? आपने कार्यक्रम देखा सचिवालय का जिसमें बच्चे जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से काफ़ी गतिविधियाँ भी थी वहाँ पर, उन्होंने पाठ भी किए, तो उनको लेकर के आपको कैसा अनुभव हुआ?
सबसे पहले तो देखिए, मॉरिशस एक पूरे विश्व में ऐसी जगह है
जी
जहाँ, और भारत से नियरेस्ट पास होने के कारण बहुत ज़्यादा लोग मॉरिशस आए थे
जी,
दास बना करके,
बिल्कुल,
दास बनाने की प्रवृत्ति से लाए गए थे। तो यहाँ आने के बाद जो उनके साथ दुर्घटनाएं घटी, जिसकी कि उन्होंने कल्पना नहीं की थी वहाँ से चलते समय, उसको उनको झेलना पड़ा। और वो भारत एक बहुत संस्कृत प्रधान देश है, अर्थात वो अध्यात्म में विश्वास करता है, अध्यात्म को हमारे ग्रंथ हैं, तो सब ग्रंथ तो नहीं ला सकते थे, लेकिन रामायण को, रामचरितमानस को अपने साथ लाए हुए थे, जो उनको संबल प्रदान करता है। और सबसे खुशी की बात यह है कि शायद उस अध्यात्म की जो शक्ति थी
जी,
वो उनको दासता से उबार करके आज इतने डेवलपमेंट मॉरिशस के रूप में स्थापित की है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे दिखाई दी कि जहाँ से, जिस मूल से वो निकल करके आए थे, उत्तर प्रदेश, बिहार, अन्य जगहों से, उन्होंने अपनी भाषा को यहाँ कुछ हद तक जीवित रखा है, पांचवी पीढ़ी लगभग बहुत सारे लोगों से जहाँ तहाँ मिले, कभी हम होटल में भी लोग मिलते हैं, तो यहाँ की उनकी जो पांच जनरेशन की गतिविधियाँ हैं
जी,
जो वो झेले हैं या किस अवस्था में आज हैं, ये सब एक साक्षात्कार छोटा सा ले ले करके जो मुझे अनुभव हुआ कि पांच पीढ़ियों का जो भी उनका अनुदान था, उस अनुदान को आज भी वो तिलांजलि देते हैं, उनको मानते हैं अपने पूर्वजों का जो कृत्य है।
यहाँ मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगी, आप अमेरिका भी रही, आप और भी देशों में, भारत में जाती रहती हैं, मॉरिशस आई पहली बार, तो ये जो एक कंपैरिजन जिसको हम लेते हैं ना, तो उसको आप जो है मॉरिशस को इस दृष्टि से आप कहाँ पाती हैं?
कंपैरिजन तो टोटल कम से कम 80-90% अभी भी भारत की प्रकृति हो या मॉरिशस की प्रकृति हो
जी,
ये समान है। और समानता का कारण है कि व्यक्ति हो या कोई भी जीव हो, एक पक्षी भी हो, तो जो उसका रहन चाल है उसी तरह का इन्वायरमेंट वो बना लेता है। तो चूंकि भारतीय यहाँ ज़्यादा थे तो भारत के खान पान
जो वो लेकर आए थे वहाँ से,
हाँ
बिल्कुल,
वो जो
उन्होंने उन्होंने सहेज के रखा है,
सहेज के आज तक रखा
के
है,
रखा है।
और खान पान में आज भी उन सब चीजों को हम पाते हैं।
बिल्कुल,
जहाँ तक आप संस्कृत की भाषा बोले, सचिवालय में जो प्रोग्राम हुआ
जी,
रामचरितमानस का जितने अच्छे धुन में, अलग अलग धुन में
जी,
उन लोगों ने, बच्चों ने गायन किया
जी,
एकदम अध्यात्म से जुड़ जाने वाला लय ताल वो पूरे दर्शकों को राममय बना दिया था।
आप एक कवित्री भी हैं, समय हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ सकें, लेकिन हम चाहेंगे आपकी एक कविता सुने।
तो कविता में मैं प्रवासियों की पीड़ा को लिखती हूँ, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बने क्योंकि ये भारतीयों की पहचान है, उसको लेकर
जी।
सभी देश को नाज है उसकी अपनी भाषा, हिंदी भाषा अमर रहे भारतीयों की अभिलाषा। भारतीयों के कंठ की हार बनी है हिंदी, प्रवासियों के कंठ की सिंगार बनी है हिंदी। तो इसलिए हिंदी को हम सभी प्रवासी चाहते हैं हृदय से अपना करके उसके बारे में अपने हम अभिव्यक्ति को प्रदान करते हैं। ऐसे तो मैं हर एक विधा में लिखती हूँ, लेकिन कविता हमारी मेन विधा है, उसमें हमारी अनुभूति तुरंत निकल करके आती है। तो अभी मैं ये चाहूँगी कि एक दूसरी कविता के माध्यम से हमारा क्या होना चाहिए जीवन में, तो जीवन सौहार्द हो, ढेरों सौगात हो, जन में प्रकाश हो, मंगल में संसार हो, ये कामना हम हर कभी चाहते हैं और मेरी भी यही इच्छा हो। नीति धर्म साथ हो, संस्कृति प्रकाश हो, जन कर्म प्रधान हो, तो मानो महान हो, ये संदेश के रूप में। और आजकल युद्ध चल रहा है यूक्रेन और उसके ऊपर, तो कभी का मन बड़ा संवेदनशील होता है, और युद्ध ना हो क्योंकि वो उसके परिणामों को देख रहा है जो हो रहा है, तो उस पर मेरी कविता लिख गई थी। जब धरती पर बम गिरा, हृदय हो गए बंद, तड़प रहे हैं बाल वृद्ध, युद्ध होता है अंत, सोच युद्ध क्यों हो रहा, हो रहा जन संहार, सिर धुनकर सब रो रहे, रोको अत्याचार।
बहुत खूब, बहुत
बाल वृद्ध है रो रहे, होता है चित्कार, क्यों मानवता मर गई, हृदय रहा धिक्कार। बच्चे जल बिन रो रहे, वृद्ध हुए असहाय, आहत मन वे चीखते, कोई करो सहाय।
बहुत खूब, बहुत खूब, यही तो एक कवित्री का, एक कवि का संदेश होता है कि देश में किस प्रकार जीवन होना चाहिए, किस प्रकार जो है हम आगे बढ़ सकते हैं और सबको जो है एक साथ लेकर चल पाए। आपके साथ जुड़े बहुत अच्छा लगा, और
धन्यवाद।
कवि सर जो है कुछ ना कुछ तो बात अगले बार के लिए रखनी ही पड़ेगी, अगली बार आप फिर आएंगी, आपके साथ फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे, फिर कुछ ना कुछ आपसे सीखेंगे।
कल्पना लाल जी, आपके साथ ये साक्षात्कार बहुत ही यादगार रहेगा, और मैं मॉरिशस की धरती को नमन करती हूँ,
और हम आपका हम आपका इंतजार करेंगे कि फिर कब आपके साथ बैठकर वार्तालाप कर सके
जी।
धन्यवाद।
क्षितिज क्षितिज, एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर।